From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Salt Lake City में Temple Square स्थित सम्मेलन केंद्र से यह अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे के 186वां वार्षिक महासम्मेलन का शनिवार दोपहर का सत्र है। इसके वक्ता गिरजे के जनरल अधिकारियों और पदर अधिकारियों में से चुने गए हैं। इस सत्र का संगीत BYU आइडाहो के विद्यार्थियों के गायक मंडली द्वारा उपलब्ध किया गया है। यह प्रसारण बोनाविल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया जा रहा है। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है। प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग इस सत्र का संचालन करेंगे।
Brothers and sisters, we welcome you
और बहनों, अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे का 186वां वार्षिक महासम्मेलन में हम आपका स्वागत करते हैं। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन, जो इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं, ने मुझे इस सत्र का संचालन करने को कहा है। हम विशेष भर में गिरजों के सदस्यों और मित्रों के शुभकामनाएं देते हैं और स्वागत करते हैं कि इन कार्यवाहियों में रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट या अनुपयोग प्रसारण द्वारा भाग ले रहे हैं। हम उन सभी की भी स्वागत करते हैं जो हमारी कार्यवाहियों को संसार भागों से स्टेक सेंटर्स उपयोग प्रसारण द्वारा किया जा रहा है। इस सत्र के लिए संगीत BYU आइडाहो की गायक मंडली के छात्र द्वारा प्रदान किया जाएगा। एशली एंड रेबेका लॉर्ड ऑर्गन पर बॉनी गुडलिफ होंगी। गायक मंडली इस सत्र के आरंभ सिंग प्रेज टू हिम गाकर करेंगी। उसके पश्चात प्रारंभिक प्रार्थना एल्डर हुगो मार्टिनेज द्वारा दी जाएगी।
Of love, the rock of our salvation.
Our dear Heavenly Father, we
हमारे स्वर्गीय पिता हम ममता के साथ प्यार के साथ आपके पास आते हैं कि हम अपना आभार प्रकट कर सकें जो शब्द बोले गए हैं और इस कॉन्फ्रेंस हॉल में और जो शब्द बोले जाएंगे हमें मार्ग दिखाएं कि हम आशीषों को प्राप्त कर सकें और उसे प्रेरित होके और उसके सर्व सेवों से और यीशु मसीह से प्रेरित होके और उनके परिवारों हमारे और पुरोहित के और पावर और अधिकारों के जो हमें दिए गए हैं सबको इकट्ठा लाएं और ये सत्य वास्तव में और टेंपल जाएं और हम आपका आभार करते हैं कि हम अपने आप को तैयार कर सकें सबक देख लें कि हम अपने परिवार के साथ इकट्ठे हो सकें और आनंद मना सकें और जो ब्लेसिंग्स आपकी गॉस्पल से आती हैं और उसकी उनकी जो जिनको जरूरत है हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन।
President Dieter F. Uchtdorf.
अध्यक्ष डीटर एफ उकडोर्फ प्रथम अध्यक्षता में द्वितीय सलाहकार अब गिरजे के जनरल पदाधिकारियों क्षेत्रों सत्रों को समर्थन मत के लिए प्रस्तुत करेंगे जिसके पश्चात गिरजे के लेखा परीक्षण विभाग के केविन आर जर्गेंसन प्रबंधक निदेशक वार्षिक रिपोर्ट पढ़ेंगे उनके पश्चात प्रथम अध्यक्षता के सचिव ब्रुक पी हेल्स गिरजे के वर्ष 2015 के सांख्यिकीय आंकड़े प्रस्तुत करेंगे
अध्यक्ष मॉन्सन ने मुझे जनरल कर्मी और क्षेत्र सत्र के समर्थन के वोट की प्रस्तुति करने को आमंत्रित किया है यह प्रस्तावित किया जाता है कि हम थॉमस स्पेंसर मॉन्सन भविष्यवक्ता दिव्यदर्शी और प्रकटीकर्ता और अंतिम दिन के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर के अध्यक्ष के रूप में हेनरी बिन आयरिंग को प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार के रूप में और डेटर विड्रफ ओड्रफ को प्रथम अध्यक्षता में द्वितीय सलाहकार के रूप में समर्थन करते हैं जो इस पक्ष में है स्पष्ट करें जो इसके विरुद्ध में है यदि कोई स्पष्ट करे वोट को नोट कर लिया गया इट इज प्रपोज दैट वी रसल एम नेल्सन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द कोरम ऑफ द 12 अपोस्टल्स एंड द फॉलोइंग एज मेंबर्स ऑफ द कोरम Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bender, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Resband, Gary E. Stevenson, and Del G. Denault. यह प्रस्तावित किया जाता है कि हम कोई विरोध में संकेत दें वोट को नोट कर लिया है यह प्रस्तावित किया जाता है कि हम प्रथम अध्यक्षता में सलाहकारों और 12 प्रेरितों के परिषद के भविष्यवक्ताओं दिव्यदर्शियों और प्रकटीकर्ताओं में रूप में समर्थन करते हैं सही पक्ष में कृपया स्पष्ट करें विपरीत यदि यहाँ कोई है सम्मान चिन्ह से करें वोट को नोट कर लिया गया है इट इज प्रपोज दैट वी रिलीज द फॉलोइंग एज 70s, effective May 1st, 2016. Manuel M. Augustin, Kent J. Allen Stephen, B. Allen Bassett,
Patrick M. Batuya, Mark A. Brack, Marcelo F. Chappi, Eleazar S. Colorado, Valerie V. Corden, Joaquin E. Costa, Jeffrey D. Cummings, Massimo DeFeo, Donald D. Deschler, Nicolas L. Di Giovanni, Jorge S. Dominiquez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Herman D. Ferreira, Moroni Gaona, Jack N. Gerard, Ricardo B. Jimenez, Douglas F. Hyam, Brent J. Hillier, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Madi T. Utenos, Jung Ho Kim, Alfred Kiyungu, Dane O. Levitt, Remigio E. Maim Jr., Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Roland D. Manz, Ramon C. Nobleza, S. Mark Palmer, Fujar Piano, Gary B. Porter, Jose L. Reyna, Esteban G. Rezek, George F. Rhodes Jr., Gary B. Sabin, Evan R. Schmutz, D. Zachary Smith, Lynn L. Summerhays, Venislao H. Swick, Greg B. Terry, Ernesto R. Torres, Fabian E. Vallejo, Emma Villalobos, J. Romeo Villarreal, Terry L. Wade. Those who wish to join us in expressing...
जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनके बेहतरीन प्रोत्साहित करने की सेवा के लिए कृपया स्टेप करें. ये प्रस्तावित किया जाता है कि सेवा मुक्त कर हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं.
And Mary R. Durham as the primary general president.
प्राथमिक जनरल अध्यक्ष के रूप में हम प्राथमिक जनरल बोर्ड के सदस्यों को सेवा मुक्त करते हैं. वे सब जो हमारे साथ मिलकर इन बहनों की उनके अद्भुत सेवा और निष्ठा की सराहना व्यक्त करते हैं, कृपया स्पष्ट करें. ये प्रस्तावित किया जाता है कि हम नए जनरल अधिकारी 70 का समर्थन करें.
मार्क ए ब्रैग, वेदरफोर्ड टी क्लेटन, वैलरी बी कॉर्डोन, जोआकिन ई कोस्टा, मासिमो डेफेओ, पीटर एफ मर्स, के ब्रेट नेट्रिस, S. Mark Palmer, Gary B. Sabin, and Evan A. Schmutz. All in favor, please manifest it. Those opposed, by the same sign. It is proposed that we sustain...
It is proposed that we sustain... ...the
following as new area 70s. Mathieu... Sorry, P. David Agassani, Kilmer A. Aguero, Rene R. Alba, Victorino A. Babida, Stephen R. Bangerter, Richard Bakiran, Dong Chol B., Michael V. Beheshti, Mathieu Benassar, Huberman Bien Emi, Kevin E. Calderwood, Louis J. Camay, Matthew L. Carpenter, Douglas B. Carter, Aroldo B. Cavalcanti, Louis Claudio Caveri, Ulysses Chavez, Brent J. Christensen, Douglas L. Dance, Mark C. Davis, Alessandro Dino Giaggi, J. Scott Dorius, M. Dirk Triskel, Antonio F. Faundes, Jose A. Fernandez, Matias D. Fernandez, Candido Fortuna, Bruce E. Gent, Michael A. Gillenwater, Daniel G. Hamilton, Matthias Held, Tom Adler Herland, Raymond S. Hyman, B. Christoph Cavaya, Todd S. Larkin, Pedro X. Lareal, Juan J. Leverino, Felix A. Martinez, Kevin K. Miskin, Mark L. Pace, Ryan V. Pagaduan, A. Moroni Perez, Carlos E. Perotti, Mark B. Pettaroo, Alan T. Phillips, Thomas T. Priday, Brian L. Rawson, Renee Romay, Blake M. Rooney, Luis G. Ruiz, Maximo Saavedra, Pedro A. Sanhuesa, Eric J. Schmutz, Mince Benjamin Tai, Heber D. Teixeira, Maximo C. Torres, Jesus Velez, Carlos Villarreal, Paul H. Watkins, C. Dale Willis Jr., William B. Wan, Luis G. Zapata. All in favor, please manifest it.
Lakshmi, kripa spasht kare. Jabrod mein hai, yadi koi. Yeh prastavit kiya jata hai ki hum prathmik general adhyaksh ke roop mein pratham salahkar aur dvitiya salahkar ke roop mein seva karne ka samarthan karte hain.
Second counselor. Those in favor may manifest it. Any opposed may so signify. It is proposed that we sustain the other general authorities, area 70s, and general auxiliary presidencies as presently constituted. All in favor, please manifest. Those opposed, if any. President Monson, the voting has been ordered.
This Monson, voto ko note kar liya gaya hai. धन्यवाद भाई और बहनों आपके विश्वास और गिरजाघर के महादेशों के आधार पर प्रार्थना करने के लिए
come forward and take their seats on the stand. They should be coming from somewhere. Here they come. President Monson always says it's a long walk. Thank you, brothers and sisters. As previously announced, Kevin R. Jerkinson will read the church audit report, followed by Brooke P. Hales, who will present the statistical report of the church for 2015.
To the First Presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Dear brethren, as directed by
Revelation, Council on the Deposition of the Tithes, Pratham Adhyakshata, Bharat Prerito ke Parishad se, aur Dharma Adhyakshas ke Antargat, Girjaghar Kosh ka Adhikarit Kharch ke Dwara banaya gaya hai. Girjaghar Sanstha Kosh ka Vivaran Budget, Swikriti Nitiyo aur Kari Vidhi ke Anusar hai. गिरजाघर ऑडिट विभाग जिसको अनुभवीय व्यवसायिकों और सारे अन्य गिरजाघर के विभागों से स्वतंत्र बनाया गया है कि ऑडिट करने की जिम्मेदारी है. योगदान प्राप्त संबंधित खर्च किए गए और गिरजाघर के सुरक्षा कर्मियां संपत्ति के उचित उद्देश्य के काम आश्वासन प्रदान करते हैं. ऑडिट का काम गिरजाघर ऑडिट विभाग का मशवरा है कि सारी सामग्री योगदान प्राप्ति खर्च हुए और 2015 वर्ष का गिरजाघर के लिए संपत्ति का लेखा रखा गया जाए और प्रशासन अनुसार के साथ स्वीकृति गिरजाघर का बजट नीतियां और हिसाब लेखांकन करना अभ्यास करना है. गिरजा ऐसे सदस्यों को बजट के अंदर जीना कर्ज न लेना और जरूरत के समय के लिए बचत रखना का अभ्यास का अनुसरण कर सिखाएगा. आधार से जमा करना गिरजाघर ऑडिट विभाग केविन आर एंडरसन प्रबंधक निदेशक.
The First Presidency has issued the following statistical report of the
Church. प्रथम अध्याय ने दिसंबर 31, 2015 को प्रगति से संबंधित और गिरजे के स्तर के सर्वे करें रिपोर्ट पेश की है. वर्ष के अंत में कुल स्टेट की संख्या 3,174 मिशन के साथ 558 जिलाएं और 3,016 वार्ड और शाखाएं हैं. कुल गिरजे की संस्था है 15,06,35,199 थी। नए बच्चों की संख्या रिकॉर्ड में 2015 में वर्ष के दौरान 32वें परिवर्तन के साथ जुड़े थे, जैसे कि दिसंबर 31 की यह पर 74,89 पूरे समय मिशनरी और 31,749 गिरजा का सेवा प्रचारक गिरजा में सेवकाई कर रहे हैं। पांच मंदिर 2015 में
Indiana and Tijuana, Mexico temples. Two temples were rededicated in 2015, the Mexico City Mexico Temple and the Montreal, Quebec Temple.
The number of temples पुनः समर्पित किए गए हैं। संचालित मंदिर की संख्या साल संपत्ति पर 149 थी।
Brothers and sisters, President Monson asked me to mention that since a few opposing notes votes were noted, we invite those with opposing votes to contact their state presidents for further questions or answers. Thank you.
The choir will now favor us with Israel,
गायन मंडली अब इज़राइल इज़राइल गॉड इज़ कॉलिंग से हमारा अभिनंदन करेगी। गीत के पश्चात 12 प्रेरितों के परिषद एल रोनल्ड ए रैस बैंड और नील एल एंडरसन को सुनेंगे।
Of war. We extend a warm welcome to the newly called General
Authorities or 70s or Prashasaniya Evam Primary General Presidency ka garam joshi ke saath barkar abhinandan karte hain. Gahan saharna ke saath hum unka jo vimukt ho gaye hain ka dhanyawad karte hain. Hum sab prem sabse prem karte hain. Mere priye bhaiyo aur behno, humne abhi ek atish abhishit अनुभव में जैसे हमने हाथ उठाकर भविष्यवक्ता दिव्यदर्शी प्रकटकर्ता और अन्य मार्गदर्शकों और जनरल अधिकारियों का हाथ उठाकर समर्थन किया परमेश्वर ने इन दिनों बुलाए हैं मैंने कभी भी प्रभु के सेवकों का मार्गदर्शन और समर्थन करने का मौके को हल्के में यूं ही नहीं लिया है अभी कुछ ही महीने पहले मैं हमने बुलावट पर हूँ बाहर प्रेरितों के परिषद के रूप में अपने समर्थन और भरोसे के द्वारा विनम्र हूँ मैं आपके साथ और इन सब महान मार्गदर्शकों के साथ खड़े होने की इच्छा को संयोज हूँ पिछले अक्टूबर मेरे समर्थन के तुरंत बाद मैं पाकिस्तान के लिए एक कार्यभार के लिए रवाना हुआ और जब वहाँ उस देश में मैं अद्भुत और समर्पित संतों से मिला था वे संख्या में कम थे परंतु आत्मा में महान थे घर लौटने के थोड़ी देर बाद मुझे निम्न नोट भाई शकील अरशद किसे एक दोस्त मेरे करने से के दौरान मुझे मिला था धन्यवाद एल्डर रस्पिन पाकिस्तान आने के लिए पाकिस्तान में यह गिरजा बढ़ रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम गिरजे के सदस्यों ने आपका समर्थन किया और आपसे प्रेम करते हैं हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप यहां थे और आपने आपको सुना वह मेरे परिवार के जीवन में स्वर्ण दिन था और हम एक प्रेरित से थे अरशद भाई मेरे संतों से मिलना एक स्नेह पूर्वक और करुणा से भरा अनुभव था और उसके शब्दों का प्रयोग करते हुए स्वर्ण दिन मेरे लिए भी था जनवरी में गिरजा मार्गदर्शकों ने फेस टू फेस ब्रॉडकास्ट में युवाओं अनेक मार्गदर्शकों और संसार भर के अभिभावकों के साथ भाग लिया था ब्रॉडकास्ट का सीधा प्रसारण इंटरनेट से बहुत से 146 देशों में हुआ था कुछ जगहों पर बहुत से दर्शन चैपल में थे और अन्य लोगों अकेले घर में युवा के साथ कुछ संख्या हजारों लोग में जुड़े थे हमारे बड़ी संख्या के साथ जुड़े दर्शक सिस्टर बॉनी ऑस्करसन यंग वुमेन जनरल प्रेसिडेंट ब्रदर स्टीफन डब्ल्यू ओवेन यंग मैन जनरल प्रेसिडेंट और मैं था युवा मेजबान के साथ संगीतज्ञ और अन्यों के युवाओं के प्रश्न के जवाब दिए थे हमारा उद्देश्य 2016 का युवा के विषय से परिचय करना था प्रेस फॉरवर्ड विद द सेंटिफेसनेट इन क्राइस्ट सेकेंड निफाई अध्याय 31 आयात 20 से जिसमें लिखा था इस कारण तो मसीह में दृढ़ विश्वास रखते हुए आशा की अखंड ज्योति में और परमेश्वर और सभी मनुष्य से प्रेम रखते हुए सदैव आगे बढ़ते चलो इसलिए अगर तुम आगे बढ़ते रहे मनुष्य की वाणी का प्याला पीते रहे और अंत तक सहनशील बने रहे तब सुनो पिता इस प्रकार कह रहा है तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा हजारों युवाओं के प्रश्नों को पढ़ने के द्वारा हमने यह सीखा था हमने सीखा कि हमारे युवा प्रभु से प्रेम के करते हैं और मार्गदर्शकों का समर्थन करते और उनके प्रश्नों के जवाब की अभिलाषा करते हैं प्रश्नावली सीखने का संकेत देती है और हमारी गवाहियों में उन सत्यों को जोड़ती है और अच्छे से तैयार होकर मसीह में दृढ़ विश्वास रखते हुए आगे बढ़े
The restoration of the gospel.
सुसमाचार की पुनर्स्थापना की शुरुआत युवा जोसेफ स्मिथ प्रश्न पूछे जाने के साथ हुई थी उद्धारकर्ता की बहुत सी शिक्षा उनकी सेवा का प्रश्न के साथ शुरू हुई थी याद करें पत्रस से उसका प्रश्न जिसने उनसे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो पत्रस ने उत्तर दिया कि तू जिएगा परमेश्वर का पुत्र मसीह है हमें एक दूसरे की सहायता करनी की जरूरत है स्वर्गीय पिता का जवाब पाने को आत्मा के निर्देशन द्वारा उस ब्रॉडकास्ट पर मैंने युवाओं कहा इस गिरजा के मार्गदर्शक आपके मामले आपकी चिंता से और आपकी चुनौती से अनजान नहीं है हमारे पास बच्चे हैं हमारे पास पोते पोतियां हैं हम अक्सर दुनिया भर में युवाओं से मिलते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं हम पवित्र स्थानों पर आपकी बातें करते हैं और हम आपसे प्रेम करते हैं मैं उन युवाओं बहुत में से एक बांटना चाहता हूँ उस कार्यक्रम से हमें बहुत से जवाब आए हैं. लीजा ग्रैंड टेरियोरियो अल्बर्ट कैनेडा से लिखते हैं, यह फेस टू फेस कार्यक्रम अद्भुत था. मेरी गवाही के लिए और सुसमाचार की धारणा का क्या बल था. हम बहुत ही आशीषित हैं प्रेरणा भर मार्गदर्शकों से जिन्होंने बहुत सी योग्यताओं के साथ सेवा करने बुलाया गया है. लीजा प्लेजरन ग्रोवा यूटा से पहले की पोस्ट पर लिखती हैं, मैं अपने विश्वास के लिए और परमेश्वर के भविष्यवक्ता का और उनके साथ काम करने वाले पुरुष और स्त्रियों का मौके से समर्थन करने के लिए आभारी हूँ. हमने आज मार्गदर्शकों का समर्थन किया है जिसके पास पवित्र प्रेरणा है को हमें शिक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए बुलाया गया है, जिन्हें बाहर के खतरों से हम हर दिन देखते हैं से सावधान रहने के लिए कहा गया है. सैबत डे के देख रेख परिवारों को धमकी से धार्मिक आजादी पर हमले से और आत्मिक तीरों के प्रकटीकरण से कला से भाइयों और बहनों, क्या हम आपकी सलाह को सुन रहे हैं. बहुत बार सम्मेलन में प्रभु भोज सभाओं और प्राथमिक में हम करुणा भर गाते हैं, लीड मी गाइड मी वॉक बिसाइड मी. यह शब्द आपके लिए क्या मायने रखते हैं. आपके मन में कौन आता है जब आप उसके बारे में सोचते हैं. आपने कभी योग्य मार्गदर्शकों के प्रभाव को महसूस किया है. वो यीशु मसीह के चेले जो अतीत में थे और आज के आपके जीवन को छूते हैं, वे जो प्रभु के पथ पर आपके साथ चलते हैं, वे शायद आपके घर के पास हों, आपके स्थानीय कलीसिया या जनरल सम्मेलन में बोल रहे हों. यह चेले आप हमारे साथ यीशु मसीह की गवाही की आशीष बांट रहे हैं. इस गिरजा के मार्गदर्शक हमारी आत्माओं के मार्गदर्शक जिन्होंने वादा किया था, धीरज बनाए और डरे नहीं, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ खड़ा हूँ. मुझे याद है अध्यक्ष थॉमस एस मॉर्सन ने हमारी कहानी बंटी के अनेक स्टेक अध्यक्ष ने घर में मलकैदिक पुरोहित्य के विधि की तैयारी के लिए निर्माणित किया था. क्या ही विशेष आशीष थी उस स्टेक अध्यक्षता के लिए जो उस समय नहीं जानता था कि वह उस युवा हरूनी पुरोहित्य का पढ़ रहा था जो एक दिन परमेश्वर का भविष्यवक्ता बनेगा. मेरे खुद के सीखने के लम्हे हमारे प्रिय भविष्यवक्ता अध्यक्ष मॉनसन में पहुंचने से है. मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है या मेरे हृदय में कि वह इस धरती पर प्रभु के भविष्यवक्ता है. मैं नम्रता से पाने वाला रहा हूँ जैसे वह प्रकटीकरण कर लेते हैं उस पर काम करते हैं, और हमें एक दूसरे की रक्षा करना, एक दूसरे का बचाने के लिए पहुँचने की शिक्षा देते रहते हैं. यही मॉर्मन के जल में भी सिखाया गया था. वो इच्छाएं जिसके लोग कहना चाहते हों, इच्छा से एक दूसरे के बोझ को उठाए, दुख से रोते हैं, उनके दुख से दुखी होते हैं और परमेश्वर के साक्षी के रूप में खड़े होते हैं. मैं आज अनंत पिता परमेश्वर उसके प्रभु यीशु मसीह के गवाह के रूप में खड़ा हूँ. मैं जानता हूँ हमारा उद्धारकर्ता जीवित है और हमसे प्रेम करता और हमारे सेवकों को निर्देश देता है. आप और मैं इस पृथ्वी पर उसका महान उद्देश्य को पूरा करेंगे. जैसे हम आगे बढ़ते हैं, निर्देशन पर चलते हैं और अपने मार्गदर्शकों को चेतावनी और चुनाव कर अनुसरण करते हैं, हम प्रभु का अनुसरण करना चुनते हैं जबकि संसार दूसरी तरफ जाता है. हम लोगों की छड़ को कसकर पकड़े रहते हैं. अंतिम दिनों के संत होने पर प्रभु की तरफ होते हैं, आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं. आज के बढ़ते प्रश्न स्पष्ट है. क्या आप गिरजा के मार्गदर्शकों के साथ संसार के अंधकार में खड़े हैं ताकि आप मसीह की ज्योति का फैला सकें. के साथ रिश्ता बहुत ही सार्थक होता है. कोई फर्क नहीं पड़ता मार्गदर्शन की आयु क्या होगी, कितनी पास या कितनी दूर, या कब वह हमारी जीवन को छुएंगे. उनकी प्रतिष्ठा अमेरिकन पोस्ट एडविन मार्कम का अक्सर है. ये कहता है शकील अरशद मेरे पाकिस्तान का दोस्त है, ने मुझे अपना समर्थन दिया. उसके भाई और पुत्रों ने वैसे ही आप सबों ने भी दिया. जब हम एक दूसरे तक पहुंचते हैं उठने का, हम उन शक्तिशाली शब्दों को साबित करते हैं, कोई नहीं जाता अपने रास्ते हैं.
Most of all,
अधिकतर हम सभी को हमें हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जरूरत होती है। धर्मशास्त्र से एक लेख वह मुझे हमेशा से आत्मिकता में बढ़ता है। जब यीशु मसीह पानी पर चलकर अपने शिष्यों से जो नाव पर गलील की यात्रा पर जा रहे थे से मिलने जाता है, वह मार्गदर्शक नए नए बुलाए गए हम में से बहुतों की तरह आज खड़े हैं। यह लेख मत्ती में अर्जित है। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए इसके पास आया, और चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे और डर के मारे चिल्लाने लगे। जब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने अपने प्रभु से परोहित करने वाली बुलाहट को सुना। पतरस ने उसको उत्तर दिया और कहा, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा, अति साहसी। पतरस एक मछुआरा था और वह दिन पानी के खतरों से अवगत था, इसलिए वह यीशु का अनुसरण करने को बाधित था, रात या दिन नाव पर या सूखी जमीन पर। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि पतरस नाव पर झुका हुआ था, हमारे दूसरे आमंत्रण के लिए नहीं रुका और पानी पर चलने लगा। सच में धर्मशास्त्र कहता है, वह नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हवा की प्रचंडता और तीव्रता बढ़ गई और तेज लहर से उसके पैर डगमगाने लगे। पतरस भयभीत हुआ और डूबने लगा। वह चिल्लाने लगा कहते हुए, प्रभु, मुझे बचाओ। परंतु यीशु ने हाथ उठाकर उसे थाम लिया। कितना शक्तिशाली सबक है। प्रभु उसके लिए वहाँ था, वैसे ही जैसे वह हमारे और आपके लिए होता है। वह हाथ बढ़ाकर और अपनी ओर खींच लेता और सुरक्षित करता है। मुझे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है और उसके हाथ से बहुत बार बचाया गया हूँ। मुझे उसकी जरूरत अभी है, ऐसी पहले ना थी, जैसे हम सबों को है। मैं कई बार नाव के किनारे पर भरोसे के साथ झुका हूँ, औपचारिक तौर में बोलते हुए अनजान जगहों पर, सिर्फ जानने के लिए कि मैं वहाँ पर अकेला नहीं कर सकता। जैसे हमारी चर्चा के दौरान प्रभु हम तक हमारे परिवारों और मार्गदर्शकों के द्वारा अक्सर पहुँचाता है, निमंत्रण देता है, मेरे पास आओ, वैसे ही जैसे पतरस को बचाया था। आपके पास भी बहुत से क्षण होंगे जिसके लगातार निमंत्रण का जवाब देने के लिए मसीह के पास आओ। क्या नाश्वर जीवन का यही मतलब नहीं है? बुलाहट हो सकती है परिवार के सदस्य को बचाने की। आओ मिशन पर आओ, गिरजे में लौटो, पवित्र मंदिर में आओ, और मेरे हाल ही के फेस टू फेस हमारे युवा कार्यक्रम में सुनो। आओ कृपा से मेरे प्रश्न का उत्तर दे। समय के दौरान हम में से प्रत्येक बुलाहट को सुनेगा, घर आओ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम पहुँचेंगे और उद्धारकर्ता का हाथ लेकर जो उसने हमारे लिए बढ़ाया है। अक्सर हमारे द्वारा बुलाए गए पवित्र मार्गदर्शक और हमारे परिवार सदस्य और उसके आने के बुलाहट को सुनकर, मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह जीवित है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, और मैं अपने पूरे हृदय से जानता हूँ कि वह हम सबसे प्रेम करता है और हमारे लिए बड़ा उदाहरण है, और पवित्र मार्गदर्शक अपने पिता के सारे बच्चों के लिए। इसके साथ मैं मेरी पवित्र गवाही देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
God loves children. He loves all children.
परमेश्वर बच्चों से प्रेम करता है, वह सारे बच्चों से प्रेम करता है। उद्धारकर्ता ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही का है। बच्चे आजकल अपने आप को बहुत विभिन्न और पारिवारिक जटिल आकृति में पाते हैं। उदाहरण के लिए, आज यूनाइटेड स्टेट्स में 2 दिनों बच्चे एक अभिभावक के साथ रहते हैं बजाय 50 साल पहले के, और यहाँ पर बहुत से परिवार हैं जो कि उनका परमेश्वर के प्रेम में कम संगठित हैं और इच्छा पूर्वक आज्ञाओं के पालन करते हैं। इस बढ़ते आत्मिक बेचैनी में पुनः स्थापित सुबह समाचार का स्तर सुझाव प्रभु के काम को लेकर बढ़ता है। बच्चे का जन्म शादी के बंधन के अंदर होने का अधिकार होता है और पिता द्वारा पाला पोसा जाता है और माँ जो विवाहित होने का आदर पूरी निष्ठा के साथ करती है। पति और पत्नी के पास गंभीर जिम्मेदारी है प्रेम करने और एक दूसरे और बच्चों का ध्यान रखने की। अभिभावकों के पास पवित्र कर्तव्य अपने बच्चों को प्रेम और योग्यता से पालन पोषण करना, उनके शारीरिक और आत्मिक जरूरतों को पूरा करना, उनके एक दूसरे से प्रेम और सेवा करना, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना सिखाना है। हम बहुत से अच्छे संस्कार संसार के सभी विश्वासी अभिभावकों को पहचानते हैं जो अपने बच्चों को देखरेख बहुत ही प्यार से करते हैं। मैं अंतिम दिन के संतों का यीशु मसीह के गिरजाघर के बच्चों को आभारी हूं जो पिता और माता के देखरेख में लीन उद्धारकर्ता के प्रति परिवर्तित होते हैं, जो पुरोहितों द्वारा मुहर बंद होते हैं और जो अपने परिवारों में अपने स्वर्गीय पिता और उसका प्रभु यीशु मसीह को प्रेम और भरोसा करना सिखाते हैं। आज मेरा आग्रह हजारों लोगों बच्चों से है, युवा और व्यस्क युवाओं से जो इनसे नहीं आए हैं। अच्छाई की कमी के लिए संपूर्ण परिवार का चित्रण करता हूं। मैं युवा से जिन्होंने मृत्यु तलाक या अपने अभिभावकों का खत्म होता विश्वास से सिर्फ नहीं बोल रहा हूं, परंतु संसार भर के हजारों युवकों से और युवतियों से जिन्होंने सुसमाचार को बिना माता या पिता के ग्रहण किया हो या उनके बिना ही गिरजा आता है से बोल रहा हूँ। यह युवा अंतिम दिन के संत गिरजा में बड़ा विश्वास लेकर आते हैं। वे आशा से परिवार की रचना के सुझाव अपनी खुद के आने वाले जीवन में करते हैं। समय पर वे हमारी प्रचारक फोरस का महत्व भाग बन जाते हैं, हमारे नेक युवा व्यस्क और वो जो वेदी पर घुटने टेकर अपने स्वयं का परिवार शुरू करते हैं। हम प्रभु के तरीकों को परिवारों के लिए लगातार सिखाते जाएंगे, लेकिन अब से हजारों सदस्य के साथ और हमारे पास परिवर्तन जो गिरजा के बच्चों में आया है, हम यहाँ तक और अधिक सोचने और संवेदनशील होने की जरूरत है। हमें गिरजा के संस्कृति और मातृभाषा समय समय पर निराली प्राथमिक के चगाना नहीं छोड़ते हैं। फैमिलीज कैन बी टुगेदर फॉरएवर, परंतु जब वे गाते हैं आई एम सो ग्लैड व्हेन डैडी कम्स होम या विद फादर एंड मदर लीडिंग द वे, सारे बच्चे अपने परिवार के लिए नहीं गाते हैं। हमारी एक मित्र बेटी ने गिरजा में एक अनुभव बांटा था। जब वह 10 वर्ष की थी, हमारे टीचर ने मंदिर विवाह पर एक पाठ बांटा था। उसने विशेषकर मुझसे पूछा, बेटी क्या तुम्हारे अभिभावक का मंदिर विवाह नहीं हुआ था? मेरी टीचर और बाकी कक्षा जवाब जानते थे। टीचर आगे पढ़ाती गई और बेटी को बहुत बुरा लगा। बेटी ने कहा, मैं बहुत सी रोई थी जब मुझे दिल की बीमारी पिछले 2 साल से पहले और सोचा मैं मर जाऊंगी। मैं दुखी हुई, सोचने लगी मैं अकेले रह जाऊंगी। मेरा एक मित्र लीफ गिरजा में खुद आता था। एक बार प्राइमरी में उसने एक छोटी वार्ता देने को पूछा गया। उसने साथ ना माँ और ना पिता गिरजा आते थे। उसके साथ खड़े होते मदद करने को यदि वह भूल जाता है क्या कहना है, लीव भयभीत था अथवा अपने आप सिमटा हुआ कई महीने गिरजा से दूर रहा। इस पर यीशु ने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। ये बच्चे और युवा विश्वासी हृदय से और गहरे आत्मिक उपहारों से आशीषित हैं। लीफ ने मुझे बताया, मैं अपने मन की गहराई से जानता हूं कि परमेश्वर मेरा पिता है और कि वह मुझे जानता है और प्रेम करता है। हमारी दोस्त वेरोनिक ने कहा, जैसे मैं सुसमाचार के नियमों से सीखती हूं और मार्मन की पुस्तक का अध्ययन करती हूं, यह ऐसा है, मैं बातों को याद करती कि मैं पहले से ही जानती थी परंतु भूल गई थी। हमारा मित्र जुलिका एलग्रीट ब्राजील से आई थी। हालांकि उसका परिवार धार्मिक नहीं था। 12 साल की आयु पर जुलिका ने बाइबल पढ़नी आरंभ की और स्थानीय गिरजा में जाती थी। परमेश्वर के विषय में अधिक खोजती थी। अपने अभिभावक के मर्जी के खिलाफ वह प्रचारकों से पढ़ती गवाही प्राप्त की और बपतिस्मा लिया था। जुलिका ने बताया था, चर्चा के दौरान मुझे सॉल्ट लेक टेम्पल का चित्र दिखाया और मुहरबंद धर्म विधि के बारे में बताया था। उसी क्षण से मेरी इच्छा एक दिन प्रभु के घर में प्रवेश करने और एक अनंत परिवार की हुई थी। यद्यपि एक बच्चा की पृथ्वी की स्थिति शायद अनुकूल ना हो, एक बच्चे का आत्मिक डीएनए संपूर्ण होता है क्योंकि एक पहचान है परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के रूप में। अध्यक्ष मॉन्सन ने कहा, परमेश्वर के बच्चों का समझने में मदद करे कि उत्तम और महत्वपूर्ण जीवन में क्या है, उनकी बढ़ाने में समर्थ से पथ का चुनाव करने में मदद करें, उनकी अनंत जीवन की राह में सुरक्षित रखें। हमें अपने हाथ और हृदय को और अधिक खोल कर रखें। इन युवाओं को हमारे समय की और हमारी गवाही की जरूरत है। ब्रैंडन, जिसने कोलोराडो में हाई स्कूल में गिरजा से जुड़ा था, ने मुझसे उनके बारे में बात की जो उसके बपतिस्म से पहले और बाद में उससे मिलने आए थे। उसने कहा, मैं परिवारों और घरों में रहता था जो समाचार को जीते थे। उन्होंने सतर मुझे दिखाया कि मुझे महसूस हुआ कि मेरा परिवार में भी होना चाहिए। वेरोनिक का जन्म नीदरलैंड में हुआ। मेरी बेटी क्रिश्चियन के साथ स्कूल में थी जब हम जर्मनी में रहते थे। वेरोनिक ध्यान देती थी कि विद्यार्थी जो गिरजा के सदस्य उनके पास ज्योति थी। मैंने जाना कि ज्योति उनके यीशु मसीह में विश्वास और उनके शिक्षाओं को जीने में थी। मेरा दोस्त मैक्स 8 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया था। उसके पिता किसी भी गिरजा के सदस्य नहीं थे और मैक्स गिरजा जा सकता था या नहीं जा सकता था। किशोर अवस्था के रूप में कई महीनों तक नहीं जाने के बाद मैक्स को अनुभूति हुई कि उसे गिरजा जाने की आवश्यकता है और एक रविवार वह लौटा था, परंतु उसने कमजोरी को हल किया जैसे वह सामान के दरवाजे से गिरजे में आ गया। वहां दरवाजे पर नए बिशप खड़े थे। मैक्स उन्हें नहीं जानता था और उसने निश्चय महसूस किया कि बिशप उसे नहीं जानता। जैसे मैक्स अंदर जाता है, बिशप ने ऊपर देखा और उसने अपना हाथ बाहर निकाला और बोला, मैक्स तुम्हें देखकर अच्छा लगा। जैसे उसने वो शब्द बोले, मैक्स ने कहा, मेरे ऊपर गर्म जोशी की अनुभूति हुई और मैं जानता था मैंने सही काम किया था। किसी को उसके नाम से जानना अच्छा होता है और उसने यीशु मसीह उन्हें छोटे बच्चों को लाने की आज्ञा दी। उसने उनके छोटे छोटे बच्चों को लेकर आशीर्वाद दिया और पिता से उनके लिए प्रार्थना की और जब उसने यह कर लिया तब फिर से रोया। अभिभावकों के आग्रह से बहुत से युवा जो सुसमाचार से प्रेम करते थे को बैप्टिज्म के लिए सालों इंतजार करना पड़ा। एमिली के अभिभावकों, जब वह बच्ची थी, तलाश हो गया कि और बपतिस्म लेना की इजाजत नहीं मिली थी। जब वह 15 की ना हुई, हमारे दोस्त एमिली उत्साहपूर्वक युवती के मार्गदर्शन से बोली, जो हमेशा पहुंचते और उसकी गवाही का शक्ति देने में मदद करते थे। किशोर कॉल्टन एंड प्रस्टन जो यूटा में रहते थे, उनके अभिभावकों का तलाक हो गया था। उसे बपतिस्म लेने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक वह प्रभु भोज भी बांट नहीं सकते थे। वह रोटी प्रति सप्ताह लेकर आते थे और वह मंदिर में युवाओं के साथ बपतिस्मा लेने के भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। जब उनका वार्ड मंदिर में जाता था, दोनों भाइयों फैमिली हिस्ट्री सेंटर से परिवारों के नाम को लाया करते थे। महान प्रभाव हमारे युवा पर मदद करने महसूस किया और दूसरे योग्य ने शामिल होकर। मैं समाप्त करता हूं एक नए मित्र के उदाहरण के साथ। उसने हम कुछ हफ्तों पहले मिले थे जब जाम्बिया लुजाका मिशन में भेंट करने गए थे। एल्डर जोसेफ संगोबा युगांडा से, उसके पिता की मौत जब वह 7 साल का था, 9 साल की उम्र में उसके पिता और उसके रिश्तेदार उसका देखरेख करने में असमर्थ थे। वह अपने आप की की करने लगा था। 12 साल की उम्र में वह प्रचारकों से मिला और बपतिस्म लिया। जोसेफ ने मुझे गिरजा उसके गिरजे से पहले दिन के बारे में बताया था। प्रभु भोज सभा के बाद मैंने सोचा यह घर जाने का समय है, लेकिन प्रचारकों ने मुझे जोजुआ वेलोसिम भी से बुलाया। जोजुआ ने मुझे बतलाया कि वह मेरा मित्र बन जाएगा और उसने मुझे बच्चों की गीत की किताब दे दी। मैं प्राथमिक में खाली हाथ ना जाऊं। प्राथमिक में जोशुआ ने एक और कुर्सी अपने बगल में लगाई। प्राथमिक अध्यक्ष ने मुझे समान आमंत्रित किया और मेरी प्राथमिक से आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड मेरे लिए गाने को कहा। मुझे बहुत विशेष लगा था। शाखा अध्यक्ष जोसेफ को पेर मुगोंजा परिवार के पास ले गए और वह अगले 4 सालों के लिए उसका घर बन गया। 8 वर्ष बाद एल्डर जोसेफ सेंगुबा ने अपने मिशन शुरू किया। वह चकित रह गए और उनका ट्रेनर एल्डर जोजुआ वॉलिज्म भी थे। बालक जिसने प्राथमिक में पहले दिन उसका अभिनंदन किया और वह मिशन अध्यक्ष उसके अध्यक्ष लीफ एरिक्सन छोटा बालक जो प्राथमिक से दूर हो गया था क्योंकि वह वार्ता करने देने से डर गया था और परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है। जब कैथी और मैं अफ्रीका में कुछ सप्ताह के लिए थे हमने मुब्जी मेई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉम्बो में भेंट की क्योंकि चैपल 2000 सदस्यों के लिए बड़ा नहीं था। हम बाहर झजे मिले थे। बाड़ा में चिपके हुए कैथी ने शांति से फुसफुसाया, नील क्या आप सोचते हैं कि बच्चों को अंदर बुलाने को आमंत्रित करना चाहिए? मैंने जिला अध्यक्ष कॉलोनजी से कहा और पूछा यदि वह बच्चों को बाड़े से अंदर बुलाकर हमारे साथ जोड़ने दे। मेरा अचंभित होना प्रेसिडेंट कॉलोनजी के निमंत्रण के साथ बच्चे न सिर्फ आए बल्कि भाग कर आए। लगभग 100 कुछ फटे कपड़े और नंगे पैरों के साथ लेकिन सुंदर मुस्कुराहट और उत्तेजित चेहरों के साथ आए थे। मैं उस अनुभव की गहराई में बह गया और उसे अपनी जरूरत को युवा तक पहुंचाने का जो अकेले हैं पीछे रह गए या बाड़ा के बाहर चिन्ह है के रूप में देखा था। हमें उनके विषय पर विचारने का उनका स्वागत करें गले से लगाए और सब कुछ करें उनके लिए जो हम कर सकते हैं उनका उद्धार करता के प्रेम के लिए। यीशु ने कहा और जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
On a single signal from the conductor.
परिचारक के निर्देश पर कलीसिया खड़े होकर गायक मंडली के साथ मिलकर गाएंगी Now Let Us Rejoice। संगीत के बाद हम 70 के एल्डर मर्विन जी आर्नल्ड एंड जायरू मजागार्दी को सुनेंगे। उसके बाद 12 प्रेरितों के परिषद एल्डर डेविड ए बेनार हमें सुनाएंगे।
This is the 186th
ये अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे का 186वां वार्षिक महासम्मेलन है।
The Savior clearly understood his mission to
rescue. उद्धारकर्ता ने स्पष्टता से समझ लिया था हमारे स्वर्गीय पिता के बच्चों को उसके बचाव के मिशन के लिए वह घोषणा करता है क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है ऐसा ही तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं है कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो मेरी दूत माँ जैस्मिन बेनियन एलनॉन ने स्पष्ट रूप से हमारे स्वर्गीय पिता की खोई हुई भेड़ों के बचाव करने की भूमिका को समझा था साथ में अपने बच्चों और पोतों पोती के लिए भी क्या ही अद्भुत भूमिका निभा सकते हैं दादा दादी नाना नाने उनके पोता पोती के जीवन में माँ को अक्सर भेंट करने के लिए दिया जाता उनसे जो उसने विश्वास से कम सक्रिय और परिवार के आधे सदस्य घोषण कर रहे हैं इसलिए उन लोगों के और भी कई उनके जिन्हें नियुक्त नहीं किया जाता है माँ एक अच्छी सुनने वाली थी वे लोग अपना दिल और आत्मा निकाल कर उनके सामने रख देते थे धीरे धीरे उनकी भेंट महीने में एक बार की नहीं रह गई थी जैसे वह बीमारों की सेवा करती और स्नेह से सराहती थी उनके जीवन के अंतिम कुछ दिन ही रह गए थे इसलिए वह अधिकतम समय उन्हें पत्र लिखने में अपने प्रेम को व्यक्त करने और अपनी गवाही बताने और उनको स्पष्ट उठने में जो उनसे भेंट करने आते थे के साथ व्यतीत करती थी जैसे हम बचाव के लिए जाते थे परमेश्वर हमें सामर्थ्य प्रोत्साहन और आशीष देता था जब उसने मूसा से इसलिए कि बच्चों को बचाने की आज्ञा दी मूसा भयभीत हुआ वैसे ही उसने हम में से बहुत भयभीत होते हैं मूसा अपने लिए बहाना मारता है कहकर कि मैं बोलने में निपुण नहीं मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ प्रभु ने मूसा को दोबारा से आश्वासन दिया मनुष्य का मुंह किसने बनाया है मुझे यहोवा को छोड़ कौन बना सकता है अब मैं तेरे मुख से सुनकर होकर जो मुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता हूँ असल में यहोवा ने मूसा से कहा था तुम कर सकते हो और तुम जानते हो क्या हम भी कर सकते हैं मैं आपके साथ चार नियमों के शेयर करता हूँ कि आप हमारे बचाव करने के प्रयत्न में मदद करेंगे नियम एक हमें कभी भी बचाव पर जाने के लिए विलंब नहीं करना चाहिए एलहांडो पटानिया एक पूर्व एरिया 70 से अपने छोटे भाई की कहानी सुनाई डैनियल जो अपने साथियों के साथ समुद्र में तैराकी करने गया था कुछ समय बाद डैनियल ने एक शीघ्र चेतावनी प्राप्त की कि एक बड़ा तूफान तीव्र से आ रहा है तुरंत डैनियल और उसके साथी पोर्ट की और चले तूफान तीव्र था पास ही कि एक मछली नाव का इंजन बंद हो गया डैनियल ने एक सांस से उसने बिगड़ी नाव को तार से बांधकर लेकर इसे सुरक्षित ले चले उन्होंने रेडियो पर सहायता मांगी जाते हुए कि तूफान बढ़ने के साथ उन्हें तुरंत ही सहायता की आवश्यकता है जैसे प्रियजनों उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे सुरक्षा गार्ड से प्रतिनिधि मछुआरों के संगठन से और नावसेना से बचाव का बेहतरीन तरीका तैरीक करने का निर्णय ले रहे थे कुछ तो तभी जाना चाहते थे लेकिन उन्हें योजना के लिए प्रतीक्षा करने को कहा गया था जबकि तूफान में फंसे लोग मदद की लगातार गुहार मांग रहे थे प्रतिनिधि लगातार मुलाकात कर रहे थे वे सही प्रोटोकॉल और एक योजना पर सहमति करने का प्रयास कर रहे थे जब आखिरकार बचाव मुंह बन गया एक आखिरी मासूम कॉल आई थी तुरंत तूफान की तीव्रता ने दो नावों के बीच की तार को तोड़ दिया और डैनियल के साथ वापस जाकर देखने के लिए कि वे किसी साथी मछुआरों को बचा सके अंत में दोनों नाव उनके साथ डूब गए साथ ही एल्डर पटियाना के भाई भी खत्म हो गए एल्डर पटानिया ने इस त्रसाद को प्रभु की चेतावनी से तुलना की जब उसने कहा तुमको बलवान ना किया ना निकाली हुई को लौटा लाया ना खोई हुई को खोजा और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों को ले लूंगा एल्डर पटानिया बताते हैं कि जब हमारे परिषद कोरम सहायक और यहाँ तक व्यक्तिगत तौर से हम जब बचाव में विलंब नहीं करना चाहिए कभी कभी बहुत हफ्ते बीत जाते हैं हमें विषय पर बात करते हुए कि कैसे परिवारों और व्यक्तिगत की मदद करें जिन्हें विशेष मदद की जा सकती है हमें विषय पर विचार करेंगे कौन उनसे भेंट करेगा और बात करेगा तब तक हमारे खोए हुए भाई और बहनें मदद मांगते रहेंगे कभी कभार सहायता के लिए कॉल या
अभी नहीं बना भी नहीं बिनती थी, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। नियम दो, हमें कभी भी आस नहीं छोड़नी चाहिए। अध्यक्ष मानसन जो तुरही की आवाज कर रहे कर बचाव करने के लिए जाने के लिए बुलाते हैं, ध्यान दें, हमारे सदस्यों को याद दिलाने की आवश्यकता है कि हमारे बहुत देर नहीं हुई है जब ये हमारे कम सक्रिय सदस्य पर आता है जिस पर आशाहीन कारण समझकर विचार कर सकते हैं। बहुत की तरह आप कुछ के साथ मैंने सुसमाचार बांटा था, जल्द ही बत्तीसवां लेंगे या सक्रिय होंगे और जैसे 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 वो मेरे गैर सदस्य मित्र टीम और उसकी कम सक्रिय पत्नी शर्लिन और अधिक समय लेंगे। 25 वर्ष से अधिक मैं टीम के साथ सुसमाचार वार्तालाप में व्यस्त था और टीम और शर्लिन को मंदिर ओपन हाउस में ले गया था, अन्य बचाव कार्य से जुड़ गए, परंतु टीम ने प्रचार से मिलने के हर आमंत्रण को नकार दिया। एक हफ्ते के अंत में मुझे स्टेक सम्मेलन का नेतृत्व करना था, मैंने स्टेक अध्यक्ष से भेंट करने के लिए जाना था। मैं शोक हुआ जब उसने मुझे मेरे मित्र का नाम बता दिया। जब टीम के बिशप स्टेक अध्यक्ष और मैंने दरवाजे पर खटखटाया था, टीम ने द्वार खोला, मेरी ओर देखा, बिशप की ओर देखा और कहा, बिशप, मैंने सोचा आपने कहा था कि किसी विशेष को लेने वाले थे। तब टीम हंस कर बोला, अंदर आ जाओ, मारो उस पर। उसने चमत्कार हुआ, तब उसने बत्तीसवां ले चुका था और वह उसकी पत्नी मंदिर में मुहर बांधे हुए थे। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। नियम तीन, कितना महान होगा आपका आनंद यदि आप एक आत्मा को बचाकर मसीह में ले आते हैं। बहुत सालों पहले मैंने बोला था कि कैसे जोस डिज़ूसा मार्केज ने उधारकर्ता के शब्दों को समझा था, यदि आपके बीच में कोई मनुष्य आत्मा में दृढ़ है उसे उसके साथ लो, उसे जो कमजोर है उसको दृढ़ बनाया जाए। भाई मार्कस जानते थे कि हर भीड़ का नाम उसके याजक कोरम में है और पहचाना कि फर्नांडो वहां नहीं था। वह फर्नांडो को ढूंढने उसके घर गया, फिर मित्र के घर आया और यहां तक कि बीच पर आखिरकार उसने उसे समुद्र में सफरिंग करते पाया गया था। वह बिल्कुल नहीं हिचकिचाया था जब तक बोर्ड ना डूब गई। डैनियल ने कहा कि सामान वह जल्द ही पानी में अपनी खोई हुई भीड़ को बचाने के लिए आनंद के उसे घर पर ले आया। उसने तब सुनिश्चित किया कि लगातार उसका ध्यान रखने के लिए फर्नांडो फिर भी छोड़कर ना चला गया। अनुमति दे आप को ताजा स्थिति के बताने कि फर्नांडो का क्या हुआ। बचाव करने के लिए और खुशी को बांटता हूँ जो कि सिर्फ एक भेड़ को बचाने के लिए आई थी। फर्नांडो ने अपनी प्रतिमा मारिया से मंदिर में शादी की, उसके 5 बच्चे और 13 पोता पोती हैं। सारे गिरजे में सक्रिय हैं, बहुत से अन्य रिश्तेदार और उनके परिवार गिरजा से जुड़ गए हैं। एक साथ उन्होंने हजारों पूर्वजों के नाम में मंदिर धर्मविधियों को करने के लिए दया और आशीष आती जा रही हैं। फर्नांडो जब बिशप के रूप में तीसरी बार सेवा कर रहा था, वह लगातार बचाव कर रहा था। उसने हाल ही में बांटा था उसके वार्ड में 32 सक्रिय युवक हरुनी पुरोहित के हैं, 21 को पिछले 18 महीनों में बचाया गया है। व्यक्तिगत परिवार परिषद सहायक कक्षाओं और घर में भेंट करने के लिए शिक्षक के रूप में हैं। नियम 4, आयु मान्य नहीं रखती, हम सभी को बचाने बुलाया गया है। अध्यक्ष हेनरी बी आयरन घोषित करते हैं कि हमारी उम्र की कोई भी काबिलियत हो, गिरजा बुलाहट स्थानीय हम सभी की एक बुलाहट है। काम करने के उधारकर्ता की सहायता उसकी आत्मताओं को बचाने तक वह दोबारा नहीं आती। हर दिन अधिक और अधिक हमारे बच्चे, हमारे युवक, हमारे वयस्क के एकाकी युवा और हमारी सारी उम्र के सदस्य, आप सभी उधारकर्ता की तुरही की आवाज को सुनकर बचाने जाना है। धन्यवाद आपके प्रयास का, मुझे अनुमति और कुछ उदाहरण बांटने के लिए। एमी 7 वर्ष की ने अपने मित्र और उसके परिवार को प्राथमिक प्रतिभोज सभा के कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया था। कुछ महीनों बाद आर्यना और उसके परिवार ने बत्तीसवां ले लिया। एलियन एकाकी युवक ने साहस किया, गिरजे का वीडियो, मॉर्मन संदेश और धर्मशास्त्र को अपने सारे दोस्त के साथ सोशल मीडिया पर बांटने का। बहन रीवन ने सुसमाचार को हर टेलीकॉमर के साथ बांटना शुरू किया जो कॉल करते थे। जेम्स ने अपने गैर सदस्य मित्र शेन ने अपनी बेटी के बपतिस्मा पर बुलाया। स्पेंसर ने उसके कम सक्रिय बहन को प्रेसिडेंट रेल्सन एम नेल्सन के सम्मेलन संबोधित रिपोर्ट का लिंक दिया। वह वार्ता को पढ़े और एक झरोखा खोल गया। मैं आप में से प्रत्येक को उद्धारकर्ता की बुलाहट को बुलाकर बचाव के लिए जाने का आमंत्रित करता हूं। मैं दृढ़ता अगवाही करता हूं कि मैं जानता हूं कि यीशु की ही अच्छा घेड़िया है। वह हमें हमसे सबसे प्रेम करता है और हमको बचाना चाहता है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
A good friend mine was a church man.
अधिकार समझ एक मेरे अच्छे मित्र ने जो गिरजे का सदस्य था ने सालों तक मुझे अनंत परिवार का सुसमा सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन यह तब तक नहीं हुआ जब तक हम सायोफालियो ब्राजील टेंपल ओपन हाउस अक्टूबर 1978 में नहीं गया था। जैसे मैं मुहर बंद कमरे में गया, वह अनंत परिवार का सिद्धांत मेरे हृदय में आ गया और मैंने कई दिनों तक प्रार्थना करता रहा कि यह सच्चा था। मैं धार्मिक नहीं था परंतु अभिभाव द्वारा पाला पोसा गया था। जैसे देखा जिन्होंने देखा और जाना था कि दूसरे धर्मों में अच्छा क्या है। मेरे जीवन के उस समय में मैंने सोचा ये सारे धर्म परमेश्वर को स्वीकार होगा। मेरे मंदिर ओपन हाउस के दौरे के बाद मैंने प्रार्थना द्वारा जवाब खोजने लगा, विश्वास और सच्चे भरोसे से कि परमेश्वर मुझे जवाब देगा। इस धरती पर कौन सा गिरजा उसका है। बड़े आत्मिक संघर्ष के बाद अनंत में मुझे एक स्पष्ट जवाब मिल गया और मुझे बपतिस्मा लेने का निमंत्रण मिल गया था, जो अक्टूबर 31, 1978 में हो गया था। साओ पाउलो ब्राजील टेंपल के संपर्क में एक रात पहले मैंने जाना कि प्रभु मुझे जानता है और बहुत ही ध्यान रखता है, मेरी प्रार्थना का उत्तर देता है। अगली सुबह मैं और मेरी पत्नी साओ पाउलो टेंपल के संपर्क में भाग लेने गए थे। हम वहां थे परंतु मैं सच में नहीं जानता था कैसे उस अद्भुत अवसर की प्रार्थना करूं। अगले दिन हमने क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया था। हमने अपनी गिरजा की यात्रा आरंभ की और हमने अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने हमारा अभिनंदन इस जीवन के बदलाव के लिए किया था। नए सदस्य की कक्षाएं प्रत्येक सप्ताह में हमें रविवार सभा में बहुत उत्तमता से मिलती। वे हमें ज्ञान से भर देते और सप्ताह जल्दी से बीत जाए की कामना करने देती थी कि रविवार आए हम और अधिक आत्मिक रोशन ले सके। मेरी पत्नी और मैं उत्सुकता से आगे बढ़ने की ओर देखने लगे मंदिर में परमेश्वर का प्रवेश कर परिवार के साथ अनंत के लिए मोहरबंद होने का। यह भाव हुआ 1 साल और 7 महीने बाद मेरे बपतिस्मे के, जो कि अत्यंत लम्हा था। मुझे ऐसा हुआ कि अंततः का विभाजित कर दिया गया है वेदी पर मोहरबंद से पहले और बाद में। कानूनी तौर पर यूनाइटेड स्टेट के ईस्ट कोस्ट में कुछ सालों से रह रहे थे। मैं शहर के वाकिफ था और बहुत हद तक छोटा था। अक्सर जब मैं पहले दिव्य दर्शन की घटना के बारे में पढ़ता था सुनता था लोगों की भीड़ का वर्णन था और मुझे यह परेशान करता था। प्रश्न मेरे मन में उभरने लगे थे, क्यों गिरजे की पुनर्स्थापना यूनाइटेड स्टेट में हुई और ब्राजील या इटली में नहीं, मेरे पूर्वजों के स्थान पर। लोगों की भीड़ जिसका वर्णन किया गया कहां थी, वे जो धार्मिक जागृति में शामिल और धर्म से परेशान थे, सब कुछ ऐसा शांत और स्थिर जगह पर था। मैंने बहुत से लोगों से इसके बारे में पूछा लेकिन जवाब नहीं मिला। मैं पोर्चुगीज में सब कुछ पढ़ा था और फिर अंग्रेजी में, परंतु कुछ नहीं मिला जो मेरे हृदय को शांत कर सके। मैं लगातार खोजता रहा। अक्टूबर 1984 में मैंने जनरल सम्मेलन में स्टेक अध्यक्ष के सलाहकार के रूप में भाग लिया था। सम्मेलन के पश्चात मैंने अपने आप पाल्मेरा उत्सुकता से जवाब पाने गया। वहां पहुंचने के बाद मुझे कोशिश के समझने की क्यों यहां पर पुनर्स्थापना हुई और क्यों ऐसा आत्मिक हंगामा हुआ था और सारे लोग कहां से आए थे जिनके बारे में मैंने सुना था यहाँ क्यों। उस समय पर मेरे लिए अति सहनीय जवाब था कि क्योंकि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की आजादी के अश्वस्त किया था। उस सुबह मैंने गार्डन इमारत देखने गया जहां पर मॉर्मन की पुस्तक छापी गई थी। मैं सेक्रेट ग्रोव गया जहां मैंने प्रार्थना की। वहां पर शायद की कोई रास्ते पर था उस छोटे शहर पार्मेरिया में। वह भीड़ कहाँ थी जिस भीड़ का जोसेफ ने वर्णन किया था। उस दोपहर मैंने पीटर विटमर फार्म में जाने का निर्णय किया और जहां जब मैं वहां पहुंचा मैंने एक आदमी को खिड़की वाले केबिन पर देखा। उसकी आंखें में गहरी चमक थी। मैं उसका अभिनंदन कर वहीं सारे प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। उसने मुझसे पूछा, आपके पास समय है? मैंने कहा हाँ। उसने बताया कि इस जगह लेक्स एरिक और ओंटारियो और नीचे को हंसन रिवर है। शुरू शुरू में 1800 लोगों ने नहर बनाने का निर्णय लिया जो कि उस क्षेत्र से होकर जाएगी। 300 मील और अधिक चौड़ाई लेगी हंसन नदी तक पहुंचने के लिए। वह एक उस समय का बड़ा काम था। वे सिर्फ मजदूर और जानवर की शक्ति पर निर्भर होते थे। पाल्मेरिया कुछ निर्माण का केंद्र था। उन्हें निपुण लोग, टेक्नीशियन, परिवार और उनके मित्रों की आवश्यकता थी। बहुत से लोग आसपास से थे, दूर की जगह से नहर पर काम करने के लिए आए गए थे। असल में वह पवित्र और आत्मिक क्षण थे क्योंकि आखिरकार भीड़ मुझे मिल ही गई थी। वे अपनी संस्कृति और विश्वास के लिए आए थे। जब उनसे उनके विश्वास के बारे में बताया मेरा मन प्रफुल्लित और परमेश्वर के द्वार मेरी आत्मिक आंखें खोल गई थी। उस क्षणों पर मैं समझ गया कैसे परमेश्वर का हाथ हमारे पिता उसकी विशाल ज्ञान से उसकी योजना में तैयारी एक युवक जोसेफ स्मिथ का लाने की, उसे धर्म की परेशानी में डालना क्योंकि वह कुम्होरा में मॉर्मन की पुस्तक की पट्टियां को छुपा कर रखा गया था। यह वही समय था पुनर्स्थापना का जहां पर पिता की आवाज सुनाई गई। 2000 साल बाद एक अद्भुत दर्शन में बालक जोसेफ स्मिथ ने बात करते हुए जब वह सेक्रेट ग्रोव में खेलने और सुनने गया था, यह मेरा पुत्र है, सुनो उनकी सुनो। वहां उनने दो ईश्वरत्व देखे थे जो तेजस्वी और महिमा भरे सारी उपेक्षा बयान करता है। हाँ परमेश्वर दोबारा अपने मनुष्य को प्रकट किया। अधिकार जो कि धरती पर था गायब होना शुरू हो गया था। पुनर्स्थापना की भविष्यवाणी पूरी होनी आरंभ हो गई। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत की आकाश में के बीच में उड़ने हुए देखा जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वाले की हर एक जाति, कुल और भाषा और लोगों को सुनने के लिए समानता समाचार था। कुछ साल बाद जोसेफ को भविष्यवाणियों का लेखा अनुबंध और धर्म विधियां परीक्षण भविष्यवक्ता हमारे प्रिय मॉर्मन की पुस्तक छोड़ गए थे और ले जा चलता है। यीशु मसीह का गिरजा बिना अनंत सुसमाचार के पुनस्थापित नहीं हो सकता। मर्मन की पुस्तक यीशु मसीह का अन्य सुसमाचार है। यहाँ तक परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का मैम, जिस मेमना जिसने दुनिया के पापों के लिए को दूर किया। मसीह ने अपने लोगों से यरूशलेम में कहा, मैं और मेरी भीड़ है जो इनका भेड़शाला के नहीं। अच्छा चरवाह मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है मैं पिता को जानता हूँ। जब विंटर प्रीमियर को छोड़कर मैं जा रहा था, मुझे याद है कि मैंने अलविदा कहा था। मुझे इतना याद है कि मेरे चेहरे पर आंसू आ गए थे। मेरा हृदय बहुत खुशी और शांति मेरी आत्मा में तसल्ली दी थी। मैं अब स्पष्ट से समझ गया था कि एक बार फिर से प्रभु ने मुझे ज्ञान और ज्योति दी है। घर आते समय धर्मशास्त्र लगातार मेरे दिमाग में बह रहे थे। पिता अब्राहम के से किया बात कि उसके बीज धरती के सारे परिवार में आशीषित होगी और इसके लिए मंदिरों का निर्माण किए गए ताकि मनुष्य के ऊपर पवित्र सामर्थ्य है। फिर एक बार धरती पर ताकि पवित्र परिवार एकता से रह सके। मृत्यु भी अलग ताकि नहीं कर सकती परंतु सारी अनंतता रह सके। अनंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर चढ़ा दिया जाएगा और सब पहाड़ियों पर अधिक ऊंचा किया जाएगा। यदि आप जिन्होंने मुझे सुना है, आपके दिल में एक प्रश्न छोड़ने मैं आपको निमंत्रण देता हूँ भविष्यवक्ता जो स्मिथ ने उदाहरण का अनुसरण करे, उसने यह याकूब में पढ़ा, पर यदि तुम किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो जो बिना उल्लंघना दिए सबको दारता से देता है। मैं अपनी गवाही देता हूँ कि प्रभु भविष्यवक्ता दिव्यदर्शी और प्रकटीकर्ता को ऊंचा रखता है। उसके राज्य में इस अंतिम दिनों के और अनंत परिवर्तनों की योजना के एक सर प्रत्यय को बनाया है। कुमारा में हुआ था वो प्रस्थापना का महत्वपूर्ण भाग था जो जोसेफ ने पट्टियों पर प्राप्त किया था। उन्होंने महान प्रेम के कारण उन्होंने अपने पाप प्रतिशत का संसार को धारण किया। मैं इसे पवित्र यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन।
A profound phrase used by King Benjamin in his teachings about the Savior and his atonement has been a recurring topic of my study and pondering for many years. In his spiritually stirring,
उसके आत्मिक क्रियाशील विदाई संदेश उसके लोगों को जिनकी उसने सेवा और प्रेम किया था, राजा बेंजामिन ने परमेश्वर की महिमा को जानने की महत्वता और उसके प्रेम की परीक्षा, पापों की क्षमा पाना, परमेश्वर की महानता को सदैव याद रखना और रोज प्रार्थना करना और विश्वास में दृढ़ रहने का वर्णन किया था। उसने यह भी वादा किया था कि इन सब बातों को करने से तुम सदैव आनंद मनाओगे और परमेश्वर के प्रेम से भरे रहोगे और सदैव अपने पापों की क्षमा प्राप्त करोगे। मेरा संदेश सदैव पापों की क्षमा के नियम पर केंद्रित होता है। इस कहावत में व्यक्त सच्चाई हमारा प्रभु यीशु मसीह में विश्वास बढ़ाती है और हमारी शिष्यता को गहरा करती है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करेगी और हमें सुधारेगी जैसे हम एक साथ जरूरी आत्मिक सच्चाइयों पर विचारेंगे। नश्वरता में हम शारीरिक जन्म का और आत्मा में फिर से जन्म के लिए मौके का अनुभव करते हैं। हम भविष्यवक्ता और प्रेरितों द्वारा चेतावनी से परमेश्वर के प्रति जागृत कर फिर से जन्म लेकर और मसीह में नई सृष्टि बनते हैं। अपने जीवन के आशीष यीशु मसीह के प्रायश्चित के द्वारा संभव प्राप्त कर सकते हैं। उस पवित्र मसीह की योग्यताओं, दया हमारी प्राकृतिक मनुष्य के स्वार्थी होने के प्रवृत्ति से उभरने में मदद कर सकते हैं और अधिक अस्वार्थी दयालु और संत बन सकते हैं। हम ऐसे जिए ताकि अंतिम दिन को हम बिना कलंक के हमारे प्रभु के सामने खड़े हो सकें। भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने यीशु मसीह के सुसमाचार में पौरोहित्य धर्म विधियों के विशेष भूमिका को संक्षेप में प्रस्तुत किया। फिर से जन्म लेना परमेश्वर की आत्मा द्वारा धर्म विधियों से आता है। इस बयान के अर्थ को समझने में फिर से जन्म लेने की प्रतिक्रिया में दोनों पवित्र आत्मा और पवित्र धर्म विधियां की भूमिका पर जोर डालते हैं। पवित्र आत्मा ईश्वर रथ के तीसरे सदस्य है। वह आत्मा का जन है और सभी सच्चाई की गवाही देता है। पवित्र आत्मा का संदर्भ शास्त्रों में सांत्वना देने वाले एक शिक्षक और एक प्रकटकर्ता के रूप में किया गया है। इसके अतिरिक्त पवित्र आत्मा एक पाप से मुक्त करने वाला है जो मनुष्य के जीवन से बुराई और व्यर्थ चीजों को जलाता है जैसे अग्नि साफ करती है। पवित्र धर्म विधियां उद्धारकर्ता के सुसमाचार का केंद्र है और उसके पास आने और आत्मिकता से फिर से जन्म लेने की प्रक्रिया है। धर्म विधियां पवित्र काम है जिसका आत्मिक उद्देश्य अनंत विशेषताएं और परमेश्वर के नियमों और कानून से जुड़ा है। सारी बचाव धर्म विधियां और प्रभु भोज की धर्म विधियां एक ही पौरोहित्य कुंजी धारक द्वारा अधिकृत होनी चाहिए। उद्धार और उत्कृष्टता की धर्म विधियां प्रबंध प्रभु के पुनर्स्थापित गिरजे में रीति रिवाजों या प्रतीक पेशकश से कहीं अधिक हैं। कुछ कुछ ये आधिकारिक स्रोत की नियुक्ति द्वारा करता है जिसमें आशीषें और स्वर्ग की समर्थ हमें से प्रत्येक के जीवन में बह सके और यह महान पौरोहित्य सुसमाचार का प्रबंध और राज्य के भेदों की कुंजियों को रखना यहाँ तक परमेश्वर के ज्ञान की कुंजी को भी। इसलिए धर्म विधियों में उसकी भक्ति की शक्ति प्रत्यक्ष होती है।
और धर्म विधियों के बिना उसका और पौरोहित्य के अधिकार का मनुष्य के शरीर में भक्ति की शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती है। धर्म विधियों को प्राप्त करना और निष्ठा के साथ आदर करके भक्ति की शक्ति को प्रदान करना आवश्यक है और उद्धारकर्ता के प्रायश्चित द्वारा सभी आशीषें उपलब्ध कराई जाती हैं। धर्म विधियों द्वारा हमें पापों की क्षमा के लिए डुबोकर बपतिस्मा द्वारा यह यीशु मसीह के सुसमाचार की आरंभिक धर्मावधि है और उद्धारकर्ता में विश्वास द्वारा और सच्चे पश्चाताप द्वारा अवश्य ही आगे बढ़ना चाहिए। यह धर्मावधि एक चिन्ह और एक आज्ञा जिसे परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए बनाया है। बपतिस्मा हारूनी पौरोहित्य के अधिकार में प्रबंधित किया जाता है। उद्धारकर्ता के पास आने और आत्मिक पुनर्जन्म की प्रक्रिया में बपतिस्मा हमारी आत्मा से पापों की जरूरी प्रारंभिक सफाई प्रदान करता है। बपतिस्मा अनुबंध में तीन मूल वचनबद्धता शामिल है। पहला, इच्छानुसार यीशु मसीह के नाम को अपने ऊपर लेना। दूसरा, उसे सर्वदा स्मरण रखना। और तीसरा, उसकी आज्ञाओं का पालन करना। इस अनुबंध के आरंभ के लिए वह दी गई आशीषों के कि उसकी आत्मा हमारे साथ हमेशा रहेगी। इसलिए बपतिस्मा की विशेष तैयारी अधिकृत ईश्वरत्व के तीसरे सदस्य को हमेशा से साथी बनाए रखने के लिए अवसर को प्रदान करना है। पानी द्वारा बपतिस्मा बपतिस्मे की आत्मा द्वारा अनुसरण करने का आदेश से पूरा होना चाहिए। जैसे उद्धारकर्ता ने निकोदमस को शिक्षा दी, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ द्वारा तीन वचन पर जोर दिया जाना, पापों की क्षमा के लिए डुबोने के द्वारा बपतिस्मा देना और पवित्र आत्मा के उभार के लिए सिर पर हाथ रखकर देने की धर्म विधि के बीच की कड़ी है। पहला वाक्य, बपतिस्मा पवित्र आत्मा को ग्रहण करने का आरंभिक पवित्र धर्म विधि है। यह कड़ी और कुंजी है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा प्रबंधित होगी। वचन दो, आप चाहे तो एक रेत की थैली को मनुष्य के रूप में बपतिस्मा दे सकते हैं, अगर दिखाई नहीं देता है पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा को पाना। बपतिस्मा पानी द्वारा दिया जाना अधूरा है और ये दूसरे आधे के बिना कुछ नहीं है, वो यह है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। वचन तीन, पानी का बपतिस्मा अग्नि के बपतिस्मे के बिना और पवित्र आत्मा वहाँ होगी इसका कोई मतलब नहीं होता, वे आवश्यक और कड़ी से जुड़े हैं। लगातार जुड़े रहना पश्चाताप के सिद्धांत के बीच बपतिस्मे की धर्म विधियां और पवित्र आत्मा का उपहार को पाना पापों की क्षमा की आशीषों को महामहिमापूर्ण धर्मशास्त्रों में बार बार दोहराया गया है। नफी घोषित करता है, द्वार जिसके द्वारा तुम्हें अंदर प्रवेश करना है वह है अपने पापों पर पश्चाताप और पानी से द्वारा बपतिस्मा लेना, और तब आता है अग्नि और पवित्र आत्मा द्वारा पापों को क्षमा किया जाना। उद्धारकर्ता स्वयं घोषित करते हैं, अब यह आज्ञा है संसार के सभी कोने में तुम पश्चाताप करो और मेरे पास आओ, मेरे नाम पर बपतिस्मा लो जिससे कि तुम पवित्र आत्मा के स्वागत के लिए पवित्र हो जाओ, जिससे कि अंतिम दिनों को तुम बिना कलंक के मेरे सामने खड़े हो सको। पवित्र आत्मा के उपहार के लिए सिर पर हाथ रखकर देने मलकाधिक पौरोहित्य के अधिकृत एक प्रबंधक धर्माविधि है। उद्धारकर्ता के पास आने और आत्मिक पुनर्जन्म की प्रक्रिया में अपने जीवन में पवित्र आत्मा का पवित्र सामर्थ्य प्राप्त करते हुए अपनी आत्मा से पापों को लगातार साफ करने की संभावना बनती है। यह आनंदित आशीषें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि परमेश्वर के साथ कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं रह सकती है। प्रभु के पुनर्स्थापित गिरजा के सदस्य के रूप में हम दोनों के द्वारा हमारे पापों से शुद्धता का आरंभ बपतिस्मे के साथ मिलकर और सौभाग्य से पापों से शुद्धि को लगातार करने से पवित्र आत्मा के समर्थ और साथी होने से ईश्वरत्व के तीसरे सदस्य होना संभव करता है। सोचिए कैसे किसान फसल लगाने और कटाई करने के बदलाव रहित नमूनों पर निर्भर होता है। समझदारी का जोड़ बोने और काटने के बीच का संबंध एक लगातार स्रोत का उद्देश्य है और सारे परिणामों और क्रियाओं पर किसान का दायित्व साल के सभी मौसमों पर प्रभाव डालता है। उसी तरह से पापों की क्षमा के लिए डुबोने के द्वारा बपतिस्मा लेने की धर्म विधियां और पवित्र आत्मा का उपहार सिर पर हाथ रखकर के बीच का संबंध अलग नहीं है। हमारी शिष्यता के हर उम्मीद पर हमारे जीवनों के मौसम में प्रभाव डालना चाहिए। प्रभु भोज तीसरा आवश्यक धर्म विधि है आस्था की सामर्थ्य पर पहुंचकर प्राप्त करने के लिए। उसके लिए हमें इस संसार से अपने आप को पूरी तरह से निष्कलंक रखना चाहिए। हमें प्रार्थना भवन जाने की और प्रभु के पवित्र दिन प्रभु भोज लेने की आज्ञा दी गई है। कृपया विचारें, प्रभु के शरीर और लहू को रोटी और पानी के प्रतीक को दोनों आशीषित और पवित्र हैं। हे अनंत पिता परमेश्वर, हम तुम्हारे पवित्र पुत्र यीशु मसीह के नाम पर इस रोटी या पानी को आशीषित करते उन सभी के लिए जो इसे खाते या पीते हैं। पवित्र करना शुद्ध और पवित्र करना है। प्रभु भोज मसीही शुद्धता को स्मरण करने का प्रतीक है। हमारे संपूर्णता से उसके प्रायश्चित पर निर्भर होना और हमें हमारे धर्म विधियों और अनुबंधों का आदर करने की हमारी जिम्मेदारी है ताकि अंतिम दिन को बिना कलंक के सामने खड़े हो सकें। प्रभु भोज धर्माविधि एक पवित्र और बारंबार निमंत्रण देती है ईमानदारी से पश्चाताप करने को और आत्मिकता से नवीनीकरण करने को। प्रभु भोज लेने की प्रक्रिया को अंदर और बाहर खुद ब खुद पापों की दोहराना नहीं है, लेकिन जैसे हम निष्ठापूर्वक और इस पवित्र धर्माविधि में टूटे मन और एक तड़पती आत्मा के साथ भाग लेने को तैयार होते हैं, तब वादा जो किया गया है कि प्रभु की आत्मा सर्वदा हमारे साथ रहेगी और पवित्र आत्मा के शुद्ध करने की शक्ति के द्वारा जैसे हमारा सदैव साथी है, हम हमेशा पापों की क्षमा ले सकते हैं। हम सच में हर सप्ताह अवसर से अपने जीवन का मूल्यांकन प्रभु भोज धर्मविधि द्वारा अपने अनुबंधों का नवीनीकरण कर और इस अनुबंध वादे को पाकर आशीषित हैं। कभी कभी अंतिम दिन के संत इच्छा व्यक्त करते हैं कि वे दोबारा बपतिस्मा ले सकें और इसके कारण शुद्ध और योग्य बने जैसे दिन बढ़ता है, जिससे वे उसके पहले बचाव सुसमाचार धर्म विधि का प्राप्त करते हैं। मैं आपको आदर से सुझाव देना चाहता हूं कि हमारा स्वर्गीय पिता और उसका प्रिय पुत्र हमारे लिए ऐसा कोई इरादा नहीं है जैसे कि आत्मिक का नवीन करने का एहसास, जलपान और पुनर्स्थापन हमारे जीवन में बस एक ही बार है। पाने की आशीष है और हमारे हमेशा पापों से क्षमा प्राप्त करना सुसमाचार धर्मविधियों की सहायता द्वारा हम समझते हैं कि बपतिस्मा हमारे आत्मिक नश्वर यात्रा से जाने का एक बिंदु है, यह मंजिल नहीं है। हमें बार बार आते रहने की इच्छा करनी चाहिए। डुबो को बपतिस्मे पवित्र आत्मा का उपहार सिर पर हाथ रख कर देना की धर्म विधियां द्वारा और प्रभु भोज एक अकेला और भिन्न घटना नहीं है, न ही ये एक परस्पर संबंध रख करने और मुक्ति की प्रगति का योगशील आदर्श है। प्रत्येक धर्म विधि हमारे आत्मिक उद्देश्य को अभिलाषा और उपलब्धि सफलतापूर्वक बढ़ाती और फैलाती है। पिता की योजना उद्धारकर्ता का प्रायश्चित और सुसमाचार की धर्म विधियां खुशहाली प्रदान करती हैं। हमें आगे बढ़ने और प्रगति कर नियम पर नियम और आज्ञा पर आज्ञा देखकर हमारी अनंत मंजिल की ओर बढ़ाते हैं। हम अपूर्ण मानव जाति नश्वरता में जीवन जीने का स्वर्गीय पिता की अनंत उन्नति की संपूर्ण योजना के अनुसार प्रयत्न करते हैं।
उसकी योजना की जरूरत महिमा करुणा और कठिन है। हम कभी कभी निर्णय से भर जाते हैं और कभी कभी पूर्ण रूप से अपर्याप्त महसूस करते हैं। हम कभी आश्चर्य करते हैं कि हम आत्मिक रूप से कभी नियमों का पालन कर पाएंगे जिससे कि हम उसके सामने दाग रहित खड़े हो सके अंतिम दिनों में। प्रभु की मदद के साथ उसकी आत्मा की शक्ति के द्वारा सब बातें सिखाएगा। सच में हम अपने आत्मिक संभावना को पहचान कर आशीषित हो सकते हैं। धर्म विधियां आत्मिक उद्देश्य और हमारे जीवन में शक्ति का आमंत्रण करती हैं, जैसे हम फिर से जन्म लेने का और मसीह के पुरुष और स्त्री बनने का प्रयत्न करते हैं। हमारी कमजोरियां बल बन सकती हैं और अपनी सीमाओं से उभर सकते हैं। यहाँ तक हम में से कोई भी इस जीवन में संपूर्ण नहीं है। हम लगातार योग्य अकलंकित रहित बन सकते हैं, जैसे हम मेमने के रक्त से धुलकर बेदाग हो जाते हैं। मैं वादा और गवाही देता हूँ, हम उद्धारकर्ता में बढ़ाते विश्वास और बड़े आत्मिक आश्वासन के साथ आशीषित हैं, जैसे हम सदैव पापों की क्षमा को हमेशा से खोजते हैं और वास्तव में अंतिम दिन प्रभु के सामने कलंकित रहित खड़े हों। मैं इन सब की गवाही पवित्र यीशु मसीह के नाम से देता हूँ, आमीन।
We are grateful for all who have spoken.
हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन जिन्होंने आज दोपहर बोला है और हम मनोहर संगीत के लिए जो प्रस्तुत किया गया है। हम जनरल परिहोत सभा के भाइयों के याद दिलाते हैं कि ये इस संध्या को 6 बजे माउंटेन डेलाइट टाइम में आरंभ होगा। मॉर्मन गायक मंडली का राष्ट्रीय प्रसारण कल प्रातः 9:30 से 10 माउंटेन डेलाइट टाइम तक होगा। इसके तुरंत बाद रविवार जनरल सम्मेलन का सुबह का सत्र आरंभ होगा। इस सत्र के हमारे अंतिम 12 प्रेरितों के परिषद एल्डर एम रसल बैलर्ड होंगे। उनके वार्ता का पश्चात गायन मंडली इस सभा का समापन आई गो वेर यू वॉन्ट मी टू गो गीत गा के करेगी। उसके बाद एल्डर टैड आर कैलिस्टर प्रार्थना करेंगे।
Tend to really get good at it after our children are grown. I will share with you this afternoon something I wish I had understood better when Barbara and I began to raise our precious children. During my apostolic ministry, I've frequently emphasized the power and importance of church councils, including mission, stake, and auxiliary councils. I believe councils are the most effective way to get real results. Additionally, I know councils are
सबसे अधिक प्रभावी साधन सही परिणाम पाने के होते हैं। इसके अतिरिक्त मैं जानता हूं कि परिषद प्रभु के साधन है और उन्होंने सृष्टि में सभी चीजों की रचना एक स्वर्गीय परिषद द्वारा रची है, जैसे कि पवित्र धर्मशास्त्र में ही वर्णित है। परंतु मैंने कभी भी सम्मेलन में सबसे बुनियादी और मौलिक और शायद सबसे आवश्यक बात की सारे परिषद की परिवार के परिषद परिषदों की हमेशा आवश्यकता रहती है। वे असल में अनंत है। हम पूर्व नश्वर जीवन में एक परिवार परिषद में संबंधित थे जब हम स्वर्गीय माता पिता के साथ उनके आत्मिक बच्चों की तरह रहते थे। परिवार के परिषद जब एक परिवार का संचालन प्रेम और मसीह समान गुणों के द्वारा किया जाता है तब वह परिवार आधुनिक तकनीक के असर का सामना कर सकता है जो अक्सर हमारा ध्यान खींचता है। एक दूसरे के साथ गुणवत्ता समय बिताने का और बुराई भी हमारे घरों तक पहुंच जाती है। कृपया याद रखें कि परिवार परिषद घरेलू संध्या से अलग है जो सोमवार को होती है। घरेलू संध्या मुख्य रूप से सुसमाचार के निर्देश और परिवार गतिविधियों पर केंद्रित है। दूसरी ओर परिवार परिषद सप्ताह के किसी भी दिन आयोजित की जा सकती है और वे मुख्य सभा होती है जहां माता पिता सुनते हैं एक दूसरे को सारे अपने बच्चों को। मैं विश्वास करता हूं कि परिवार परिषद 4 तरह की हैं। पहली एक सामान्य परिवार परिषद जिसमें पूरा परिवार शामिल होता है, दूसरा एक कार्यकारी परिषद जिसमें माता पिता शामिल होते हैं, तीसरा एक सीमित परिवार परिषद जिसमें माता पिता और एक बालक शामिल होता है, चौथा एक से एक परिवार परिषद जिसमें एक माता पिता और एक बालक होता है। इन सभी परिवार परिषदों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर देना चाहिए ताकि सभी एक दूसरे को देखें और ध्यान देकर सुने। आप चाहे ताऊ परिवार परिषद में और दूसरे उचित परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक टोकरी रख सकते हैं ताकि जब भी परिवार इकट्ठे हो तब सब माता पिता के साथ अपने फोन, टैबलेट और MP3 प्लेयर्स को उस टोकरी में जमा कर सकें। उसके बाद वे एक साथ परामर्श कर सकें। फेसबुक, टेक्स्ट, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और ईमेल पर जवाब ना देकर। मैं संक्षिप्त में योगदान करने के लिए अनुमति चाहता हूं कि कैसे प्रत्येक परिवार परिषद कार्य करते हैं। पहले पूरा परिषद सारे परिवारों के सदस्यों को शामिल करता है। गिरजाघर की पत्रिका शीर्षक हमारा परिवार वर्णन करती है। यह परिवार परिवार की समस्याओं पर, आमदनी पर अध्ययन कर सकती है, योजना बना सकती है, एक दूसरे को सहारा और शक्ति दे सकते हैं और एक दूसरे के लिए परिवार के विभाग के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यह परिषद को एक पूरे युक्त समय पर मिलना चाहिए और किसी और परिवार परिषद की तुलना में अधिक औपचारिक होना है। इससे आरंभ प्रार्थना के साथ होना चाहिए या केवल बातचीत के एक वास्तविक विस्तार में से हो सकता है जिसका आरंभ दूसरी विन्यास में हुआ है। कृपया ध्यान देकर, परिवार की परिषदों में औपचारिक आरंभ और समाप्ति की संभावना हमेशा नहीं होती। परिवार के परिषद वास्तव में काम करते हैं जब माता पिता तैयार होते हैं और बच्चे सुनते हैं और विचार विमर्श में भाग लेते हैं। परिवार की निजी अवस्था कुछ भी हो, यह आवश्यक है कि हम हर एक परिवार के सदस्य की परिस्थिति को समझें। हालांकि हम सब ही डीएनए के हो सकते हैं, लेकिन इस स्थितियों और परिस्थितियों हमें एक दूसरे से अलग कर सकती है और जिसमें परिवार परिषद के दयालु सहयोग की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, इस संसार में सभी बोलचाल और बांटना और प्रेम किसी एक चिकित्सा समस्या या भावनात्मक चुनौती जो एक परिवार का सदस्य भुगत रहा हो उसका शायद समाधान ना निकाल सके। ऐसे समय में परिवार परिषद एक निष्ठा, स्नेहमय और समर्थन की जगह बन जाती है जो कि बाहर की मदद के सहयोग प्राप्त करता है। छोटे बच्चों के लिए भाई बहन और विशेष रूप से बड़े हैं एक शक्तिशाली उपदेशक हो सकते हैं। अगर माता पिता कठिनाई और दुख के दौरान उनकी मदद और समर्थन करने के लिए परिवार के परिषद का उपयोग करते हैं, इस तरह से एक परिवार बहुत कुछ एक वार्ड की तरह है। जब एक बिशप वार्ड परिषद के सदस्यों को शामिल करता है, वह समस्याओं को समाधान करते हैं और बहुत सी अच्छाई को पूर्ण करते हैं जो हमें उनकी मदद के बिना नहीं कर सकते। उसी तरह से माता पिता को चुनौतियों और विपरीत परिस्थितियों को निपटने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को शामिल करने की आवश्यकता है। उस तरीके से परिवार परिषद की शक्ति को कार्य पर डाला जाता है। जब परिषदों के सदस्यों का महसूस होता है कि वह निर्णय का भाग है, वह सहायक बन जाते हैं और विशिष्ट सकारात्मक परिणामों की उपलब्धि होती है। हर परिवार परिषद में दोनों माता पिता और बच्चे नहीं होते। आपका परिवार परिषद हमारे परिवार परिषद की तुलना में बहुत अलग लग सकता है, जैसे कि हम जब अपने 7 बच्चों का पालन कर रहे थे। आज हमारी परिवार परिषद में मैं और बारबरा हैं। जब तक कि हम एक विस्तारित परिवार परिषद का आयोजन नहीं करते जिसमें कि हमारे वयस्क बच्चे, उनके जीवन साथी और कभी कभी हमारे नाती पोते और महान नाती पोते शामिल होते हैं। जो लोग अकेले हैं और जो अपने घर से दूर रहने वाले विद्यार्थी हैं, वे दिव्य परिषद का पालन कर सकते हैं, अपने दोस्तों और साथ में रहने वाले को साथ लेकर सलाह कर सकते हैं। गौर करें कैसे एक अपार्टमेंट के माहौल को बदला जा सकता है। यदि कमरे में साथी नियमित तौर पर प्रार्थना सुनना चर्चा और योजना साथ में और होकर बनाए, हर एक परिवार परिषद को अपना हो सकता है और इस दिव्य नमूने का लाभ उठा सकता है और जो एक इसने ही स्वर्गीय पिता ने स्थापित किया है। ध्यान दें, जैसे कि पहले समय समय पर विस्तारित परिवार परिषद मददगार हो सकता है, एक विस्तारित परिवार परिषद दादा और दादी और बड़े बच्चों के हो सकता है जो घर पर घर पैर नहीं रहते। यदि दादा और दादी और बड़े बच्चे दूर रहते हो, वह परिवार परिषद में स्काइप फोन या फेस टाइम के द्वारा भाग ले सकते हैं। आप गौर कर सकते हैं परिवार रविवार को परिवार परिषद रखने की, जो कि हफ्ते का पहला दिन होता है। परिवार बीते हुए हफ्ते और आने वाले हफ्तों की समीक्षा कर सकते हैं। यह बिल्कुल वही हो सकता है जिसकी आपके परिवार को साबात के दिन को एक आनंदमय अनुभव बनाने में मदद करते हैं। दूसरे प्रकार की परिवार परिषद कार्यकारी परिषद होती है जिसमें केवल माता पिता शामिल होते हैं। इस समय के दौरान माता पिता प्रत्येक बच्चे के शारीरिक भावनात्मक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की समीक्षा और उनकी प्रगति पर बात कर सकते हैं। कार्यकारी परिषद में भी पति और पत्नी के लिए एक अच्छा समय एक दूसरे के साथ अपने निजी संबंधों के बारे में बात करने के लिए होता है। जब एल्डर हैरोल्ड बी ली ने हमारी मुंह भर को प्रदर्शित किया था तो तब उन्होंने हमें इस सिद्धांत सिखाया था कि जिसमें मैं विश्वास रखता हूँ जोड़े मददगार पाएंगे, कभी भी इकट्ठे घुटने टेके बिना नहीं सोना, हाथ पकड़कर और अपनी प्रार्थना करना। ऐसी प्रार्थना स्वर्गीय पिता को आमंत्रित करती है हमें पवित्र आत्मा की शक्ति से सलाह देने के लिए। तीसरे प्रकार की परिवार परिषद एक सीमित परिवार परिषद है जहां दोनों ही माता पिता प्रत्येक बच्चे के साथ औपचारिक या अनौपचारिक वातावरण में समय बिताते हैं। यह एक अवसर है पहले से चर्चा और निर्णय लेने का कि वह कल क्या करेंगे। जब वह निर्णय लिए जाते हैं तब वह इस भविष्य के लिए यदि आवश्यक हो रिकॉर्ड करना चाहेंगे। यदि आपका पुत्र और पुत्री आपको एक कट्टर समर्थक के रूप में देखते हैं, ताऊ या परिषद की बैठक अवश्य के लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्थापित कर सकती है। यह ऐसा समय है जहां ध्यान से चिंता और चुनौतियों का को सुनना होता है जिसका सामना बच्चे ना आत्मविश्वासी की कमी दुरुपयोग बदमाशी का डर के साथ किया हो। परिवार परिषद का चौथा प्रकार का एक और परिवार परिषद है जिसमें माता पिता में से एक और एक बालक शामिल है। इस प्रकार की परिवार परिषद आमतौर पर हो जाती है। उदाहरण के तौर पर माता पिता और बच्चे अनौपचारिक अवसरों का लाभ उठा सकते हैं जब वे कार में सवार या घर के आसपास काम कर रहे हैं। माता पिता के साथ एक बच्चे के साथ सैर पर जाना एक विशेष आध्यात्मिक और भावनात्मक समय प्रदान करता है। अग्रिम में इन्हें कैलेंडर कर लेना चाहिए ताकि बच्चे अपने माता पिता के साथ विशेष समय बिताने को देखें। अब बहनों और भाइयों, ऐसा समय था जब हमारे घरों की दीवारें हमें बाहरी घुसपैठ और प्रभावों में रक्षा प्रदान करती थी। हम औने दरवाजे को ताला लगाते थे, खिड़कियां बंद करते थे और दरवाजा बंद करते थे और हम सुरक्षित सकुशल महसूस करते थे और बाहर की दुनिया से अपने छोटे से शरण में सुरक्षित महसूस करते थे। वह दिन जब अब आ चुका है, भौतिक दीवारें दरवाजे घेरा और हमारे घरों के द्वार इंटरनेट वाईफाई और मोबाइल फोन अनदेखे प्रसार के आक्रमण से नहीं बचा सकते। वे हमारे घरों में बस कुछ ही क्लिक और कैसरोकेस से घुस सकते हैं। सौभाग्य से प्रभु ने हमें एक मार्ग दिया है नकारात्मक टेक्नोलॉजी का सामना करने के लिए, जो हमें एक दूसरे के साथ गुणवत्ता समय बिताने में विचलित करती है। उन्होंने हमें परिषद व्यवस्था मजबूत रक्षा बचाव और हमारे सबसे बहुमूल्य का पोषण रिश्तों का पोषण करने के लिए दी है। बच्चों को हताशापूर्ण माता पिता की आवश्यकता होती है सुनने के लिए, और परिवार परिषद यह समय प्रदान कर सकता है जिसके दौरान परिवार के सदस्य समझना और एक दूसरे को प्रेम करना सीख सकते हैं। आलमा ने सिखाया, प्रभु से सभी कार्यों में सलाह ले और वह तुझे की ओर निर्देशित करेगा। प्रभु को प्रार्थना के माध्यम अपने परिवार परिषद का भाग बनने के लिए आमंत्रित करने से हमारे रिश्ते एक दूसरे के साथ सुधरेंगे। हम स्वर्गीय पिता और हमारे उद्धारकर्ता की मदद के साथ और भी धैर्य, विचारशील, सहायक, क्षमाशील और समझ सकने वाले बन सकते हैं। जैसे कि हम मदद के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी मदद से हम अपने घरों का थोड़ा सा स्वर्ग जैसा इस धरती पर बना सकते हैं। एक परिवार परिषद जो स्वर्ग की परिषदों के स्वरूप मसीह के प्रेम से भरा हुआ है, प्रभु की आत्मा द्वारा निर्देशित है, हमारे परिवार को सुरक्षित रखते हुए उन सभी चीजों पर ध्यान भंग करती है जो कि हमारा कीमती समय एक दूसरे के साथ बिताने से चुरा लेती है और हमें संसार की सभी बुराइयों से भी सुरक्षा प्रदान करती है। प्रार्थना के संयुक्त होकर एक परिवार की परिषद उद्धारकर्ता की उपस्थिति को आमंत्रित करते हैं, जैसे कि उन्होंने वादा किया, जहां मेरे नाम में 2 या 3 इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच उपस्थित होऊंगा। प्रभु की आत्मा को अपने परिवार परिषदों का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करना हम पर वारण से अपार आशीष लाती है। अंत में याद रखें कि परिवार परिषद नियमित रूप से होती है, वह पारिवारिक समस्याओं को शुरू में ही पता लग जाता है और कली की अवस्था में उनका खात्मा हो जाता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को मूल्य और महत्व की भावना दे सकता है।
May our Heavenly Father bless all of our families as we counsel together is my humble prayer in the name of the Lord.
यीशु मसीह के नाम में आमीन।
Thank you. Our Father in heaven, we're most grateful
for you. स्वर्गीय पिता, हम आपके बहुत धन्यवाद देते हैं जो आत्मा हमने यहाँ पे आज महसूस की है और कन्फर्म के पुष्ट और सिद्धांतों के सच्चाई को हमने आज सुना और जिनका समर्थन किया गया, हम उन सबके लिए आपका आभारी हैं। उनके वर्क कामों को आत्मा और उनकी शक्ति दीजिए। आपके पुत्र के बलिदान के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। हम सबके जीवन में उनके प्रभाव के लिए और सारी इन आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबके पास उपहार हो। यीशु मसीह के विश्वास में हम बढ़ते जाएं और हमारे में विनम्रता आए और सबको प्रेम करें और जो उपहार हमें मदद करेंगे कि हम ताकि हम उन सब बातों को कर सके जो परमेश्वर हमें यीशु मसीह के द्वारा देना चाहते हैं। आपके यीशु मसीह के पुत्र के नाम में आमीन।
This has been a broadcast of the 100.
ये अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे का 186वां वार्षिक महासम्मेलन था। इसके वक्ता गिरजे के जनरल अधिकारियों और पदाधिकारियों में से चुने गए थे। इस सत्र का संगीत मॉर्मन मंडप गायक मंडली द्वारा किया गया था। BYU आइडियो किया गया था। इस प्रसारण बोनाविल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया गया था। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन, अन्य उपयोग वर्जित है।